पृष्ठ संख्या 50, अध्याय 4। साइकिल भागती जा रही थी। यह वैसा तो नहीं था जैसा फिल्मों में होता है, लेकिन कुछ कुछ फिल्मों से मिलता भी था। बसंती का मन चाह रहा था कि साइकिल किसी ढलान पर से उतरे तेज तेज, और साइकिल के पीछे बैठे बैठे वह अपने दोनों हाथ फैला दे किसी पंछी के पंखों की तरह, जैसा फिल्मों में होता है, और सर से साइकिल कहीं से कहीं पहुंच जाए। बसंती जैसे नाटक खेल रही थी, और वह स्वयं नाटक की एकमात्र दर्शक भी थी और अभिनेत्री भी। जो कुछ घट रहा था वह सच भी था, और उसमें नाटक देखने और खेलने की उत्तेजना भी थी। जो कुछ हो रहा था वह नाटक है, मैं उसे खेल रही हूँ, पर मैं अभिनेत्री नहीं हूँ, बसंती हूँ। नहीं, जो कुछ हो रहा है वह सच है, नाटक नहीं है, पर मैं बसंती नहीं हूँ जो इसे खेल रही हूँ, कोई अभिनेत्री इसे खेल रही है। पृष्ठ संख्या 51। फिल्म की अभिनेत्री और बसंती में अंतर यही था कि फिल्म की अभिनेत्री का साहस झूठा होता है, उसका जोखिम झूठा होता है, जबकि अपने को अभिनेत्री मानकर व्यवहार करने वाली बसंती का साहस सच्चा था और उसका जोखिम भी सच्चा था, जिसके पीछे अनेक खतरे मंडरा रहे थे। साइकिल बराबर आगे बढ़ती जा रही थी। अब पीछे वाली गली में हो जा, उधर से चल, साइकिल के पीछे बैठी बसंती ने कहा। नहीं, वहाँ धोबी और धोबन बैठे हैं, तुम्हें पहचान लेंगे। कुछ नहीं होगा, उधर से ही चल। साइकिल पिछवाड़े की गली में घूम गई। बसंती का दिल धक धक करने लगा। धोबी धोबन के पास से गुजरते हुए साइकिल की रफ्तार तेज हो गई। धोबी चबूतरे पर लाल रंग का कोई कपड़ा बिछाए इस्त्री कर रहा था, जबकि धोबन जमीन पर बैठी माथे पर हाथ रखे सड़क की ओर देख रही थी। धोबन के सामने से निकलते हुए सहसा बसंती के मुंह से हंसी फूट पड़ी, टुनटुनाती सी हंसी जो फट से उसके मुंह से निकल आई थी। धोबन ने सिर घुमाकर साइकिल की ओर देखा। बसंती अभी भी हंसे जा रही थी, पर उसने कपड़े से मुंह को ढक रखा था। गली का छोर आया तो बसंती बाएं हाथ को घूम जाने का आग्रह करने लगी। दाएं हाथ को दूध का डिपो पड़ता था। वहां तेरी माँ बैठी है, साइकिल चलाने वाले ने कहा, मैं उसे देख आया हूँ, पहचान लेगी तो मुसीबत आएगी। कुछ नहीं होगा, उधर से ही चल। मैं सचमुच दूध के डिपो के बाहर बैठी थी, मैली कुचैली माँ, टोकरी में बोतलें रखे धूल में जैसे लौट रही थी। बूथ खुलने से घंटा भर पहले ही माँ वहाँ जा बैठती थी। पर माँ के सामने से गुजरते हुए बसंती ने अपने आप ही उपेक्षा से मुंह फेर लिया। 4 नंबर ब्लॉक पीछे छूट गया, दाएं हाथ स्कूल की दीवार शुरू हो गई। पृष्ठ संख्या 52। आमने सामने खड़े 2 मंजिला मकानों की कतार भी पीछे छूटती जा रही थी। जोखिम की हिलोर में बसंती फिर से उत्तेजित होने लगी। किधर जा रहा है? अभी इधर और घूमेगा, उधर से चल। किधर से? टैक्सियों के अड्डे की तरफ से। पागल हो गई है क्या? तेरे बाप ने देख लिया तो? कुछ नहीं होगा, उधर से ही चल। स्कूल की लंबी दीवार को पीछे छोड़ने के बाद साइकिल ने संडास के पास से मोड़ काटा। मोड़ मुड़ते ही पटरी पर सामने चौधरी खड़ा था और किसी की हजामत बना रहा था। उसके आयन सामने से गुजरते हुए बसंती की टांगें कांप गईं। हाय, मैं क्या कर बैठी? अगर उसने देख लिया तो सचमुच आफत आ जाएगी। चौधरी ने कमर सीधी की और हाथ में ब्रश पकड़े ही पकड़े सड़क की ओर देखने लगा। तभी साइकिल सामने से गुजरी। पीछे की सीट पर बैठी बसंती ने अध ढके चेहरे में से कनखियों से अपने बाप की ओर देखा। चौधरी की छोटी छोटी आंखें सांप की आंखों की तरह साइकिल की ओर ही देख रही थीं। ऐन उसी क्षण उसकी आंखें साइकिल की ओर मुड़ी भी थीं, पर उनमें पहचान की चमक नहीं आई और साइकिल आगे बढ़ गई। खतरा टल जाने पर पीछे बैठी बसंती फिर हंसने लगी। बाप रे, मैं तो ऐसी डरी, तुम्हें क्या बताऊं? वह मेरी तरफ ही देख रहा था, मैं भी उसी को देख रही थी, पर उसने नहीं पहचाना। दाएं हाथ पटरी के साथ साथ चलते हुए स्कूल की ओट में चले जाने पर साइकिल रुक गई। क्यों, रुक क्यों गए हो? बसंती ने हैरान होकर पूछा। इधर आ सामने, मेरी बात सुन, साइकिल सवार ने डांटती हुई सी आवाज में कहा। क्या है? बसंती कूद कर साइकिल पर से उतरी और उसके सामने जा खड़ी हुई। अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो? उसने कहा, पर बसंती पर नज़र पड़ते ही वह स्वयं हंसने लगा। बसंती अजीब सांग बनी हुई थी, सिर पर छोटी सी पगड़ी, पृष्ठ संख्या 53, जैसे सिख लड़के बांधते हैं। बाल जूड़े की शक्ल में बंधे हुए, नीचे बुशर्ट और तंग सी पतलून। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई सरदार छोकरा खड़ा है। उसे देखते हुए सचमुच पता नहीं चल पाता था कि यह कोई लड़की है जिसने लड़कों के कपड़े पहन रखे हैं। भागते समय तो दोनों के बीच इस तरह का कोई विचार नहीं उठा था। फैसला तो यह हुआ था कि श्यामा बीवी के घर की पिछली सीढ़ियों पर बसंती भेष बदल कर बैठी होगी और दीनू साइकिल पर आएगा। बसंती कूद कर साइकिल पर बैठ जाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी था, पर साइकिल के कैरियर पर बैठते ही बसंती के दिल में हिलोर सी उठी, एक अजीब लापरवाही सी, और वह रमेश नगर में से निकल जाने के बजाय उसी में चक्कर लगाने का आग्रह करने लगी। चल बैठ, बसंती को सिर से पांव तक देखते हुए दीनू ने मुस्कुरा कर कहा, एक चक्कर तो और लगाएंगे। इधर से चल, मार्केट की तरफ से, कोई नहीं देखेगा, तू फिक्र नहीं कर। और बसंती कूद कर साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी, दीनू ने कहा, पर यह मानकर कि लड़की उसके साहस को चुनौती दे रही है, वह मार्केट की ओर ही मुड़ गया। एक अजीब जुनून सा बसंती पर सवार था। वह बार बार अपने माँ बाप और संबंधियों के सामने से होकर निकलना चाहती थी, उन्हें ठेंगा दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारी आंखों के सामने भाग कर चली जा रही हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे रोक कर देखो तो जो रोक सकते हो। बसंती जानती थी कि अगर माँ ने उसे पहचान लिया तो काली नागिन की तरह फुफकारती हुई उस पर झपटेगी और उसे साइकिल पर से घसीट लाएगी, और अगर बाप ने देख लिया तो वह तो उसे अधमरा करके ही दम लेगा। लेकिन बसंती आग के साथ खेल रही थी और इसमें उसे मज़ा आ रहा था। दूसरी बार माँ के सामने से गुजरते हुए, जबकि बूथ पर दूध लेने वालों की भीड़ बढ़ गई थी और उसकी माँ टोकरी में दूध की बोतलें रखे बूथ से लौट रही थी, बसंती ने मुंह उघाड़ कर अपनी जीभ भी निकाली थी, पर माँ ने कोई ध्यान नहीं दिया था। और पृष्ठ संख्या 54। बसंती मुंह में शमला ठूंस कर हंसने लगी थी। मार्केट पार करके फिर उन गलियों में चक्कर लगाने लगे जहाँ बसंती अलग अलग घरों में काम करती रही थी। इन घरों के सामने से गुजरते हुए बसंती को पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इन घरों को सदा के लिए छोड़े जा रही है। बाबू हर गोपाल का घर पीछे छूट चुका था। उसकी बीवी जब सोकर जागेगी तो रसोई घर में पड़े बर्तनों के ढेर को देख कर कहेगी, बसंती अभी तक नहीं आई, न जाने कहाँ मर गई है। यह सोचकर बसंती को गुदगुदी हुई। श्यामा बीवी के घर के सामने से गुजरते हुए बसंती ने झट से ऊपर की ओर देखा, छज्जे पर कोई नहीं था। श्यामा बीवी भी सो रही हैं। उसे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं जा रही हूँ। आंगन में खड़ा आम का पेड़ निस्तब्ध सा खड़ा था। नीचे जमीन पर आम के सूखे पत्ते बिखरे थे। आम के पेड़ को देखकर बसंती को मानो श्यामा बीवी की आवाज़ सुनाई दी, उतर नीचे उतर बसंती। और बसंती का मन जाने कैसा हो आया। पेड़ पीछे छूट चुका था। साइकिल जब डॉक्टर बाबू के घर के सामने से गुजरी तो बसंती को फिर जैसे अपनी आवाज़ सुनाई दी, मुझे ढूंढ लो, बताओ तो मैं कहाँ हूँ। और डॉक्टरानी बीवी दोनों हाथ कमर पर रखे उसे बिना खोजे ही डांट रही थी, निकल आओ जहाँ भी हो, मुझे तेरी ये शरारतें पसंद नहीं। जब बसंती रमेश नगर में काम करने आई थी तो वह बिल्कुल बच्ची थी। घर मालकिनों के साथ छिपा लुक्की खेलती रहती थी और डॉक्टरानी बीबी दोनों हाथ कमर पर रखे कहती, बसंती तेरी आंखें तो हिरनी जैसी हैं, पर हिरनी तो शरीफ होती है, तू तो शरारत का पुतला है। बसंती को लग रहा था जैसे चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं, वैसे ही जैसे रेलगाड़ी में लगता है एक बार जो आंखों से ओझल हो गई तो दोबारा सामने नहीं आती। 8वें ब्लॉक का मोड़ काट कर साइकिल फिर श्यामा बीवी के घर की ओर घूम गई। श्यामा बीवी के घर के सामने पहुँच कर बसंती ने उचक कर ऊपर छज्जे की ओर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। श्यामा बीवी लंबी तान कर सोती हैं। दिन में 2 घंटे सोओ नहीं तो सिर दुखने लगता है। क्या यह इस समय छज्जे पर खड़ी होती तो बसंती को पहचान पाती, श्यामा बीबी को मालूम ही नहीं। पृष्ठ संख्या 55। कब मैंने उसी के घर की पिछली सीढ़ियों पर बैठकर कपड़े बदले और कब मैं साइकिल के पीछे बैठकर निकल आई। क्या इन कपड़ों में श्यामा बीबी मुझे पहचान पाएंगी। तभी सहसा घर के छज्जे पर सचमुच श्यामा बीबी आ गईं। आंखें मलती हुई और माथे पर झूलती बालों की लट को बालों में खोसती हुई, दोनों कोहनियाँ छज्जे से डंडहरे पर टिकाए नीचे सड़क की ओर देखे जा रही थी। बसंती का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसने घबरा कर मुंह फेर लिया, पर फिर वह अपने को संयत नहीं रख पाई और झट से सिर उठाकर छज्जे की ओर देखने लगी। साइकिल आगे बढ़ती जा रही है, श्यामा बीबी ने उसे नहीं पहचाना। बसंती आश्वस्त भी हुई और बेहद निराश भी। उसका मन हुआ चिल्ला कर कहे, देखो श्यामा बीबी, मैं ही तो हूँ यहाँ बैठी हूँ। पर वह बोली, नहीं श्यामा बीबी। अब सिर तनिक टेढ़ा किए उसी की ओर देखे जा रही थी। बसंती के मन में फिर हिलोर सी उठी और उसने हाथ हिलाकर श्यामा बीबी को टाटा कर दिया। उसका हाथ हिल रहा था जब साइकिल मोड़ काट गई। श्यामा बीबी का घर पीछे छूट गया तो बसंती का मन उदास हो उठा। जाने मैं कहाँ जा रही हूँ, कब लौटूंगी, कभी लौटूंगी भी या नहीं, कभी श्यामा बीबी फिर मिलेंगी भी या नहीं। नहीं, श्यामा बीबी से मिलने तो मैं जरूर आऊंगी। एक दिन लुक छिप कर पिछली सीढ़ियों से चढ़कर सीधी उसके घर जा पहुंचूंगी। श्यामा बीबी बैठक में बैठी टीवी देख रही होंगी, मुझे देखते ही घबरा कर उठ खड़ी होंगी। कलमुही क्यों आ गई है, तुझे किसी ने देखा तो नहीं। साइकिल मोड़ काट चुकी थी, श्यामा बीबी आंखों से ओझल हो गई थी। ठीक ही हुआ जो उसने नहीं पहचाना, पहचान लेती तो बहुत बिगड़ती। पर हाय, क्यों नहीं पहचाना, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उसके घर के नीचे से होकर ही गई थी। ढाबे के पास बसंती को अपनी बड़ी बहन नजर आई, अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को साथ लिए ढाबे पर से सूखी रोटियां लेने आई थी। बसंती ने झट से मुंह फिर लिया। जहां माँ की नज़र नहीं पहुंचती, वहां बहन की झट से पहुंच जाती है। और बहन का कुछ भरोसा नहीं, पल में मासा पल में तोला। मैली कुचैली बहन, बच्चे भी गंदे, सारा वक्त गली की नालियों पर डोलते रहते। पृष्ठ संख्या 56। मुंह और आंखों पर मक्खियां भिनभिनाती हैं और बहन मैली धोती जगह जगह से फटी हुई, मैले दांत और गदली आंखें और घसीटती, कभी कभी किसी फ्लैट में, कभी किसी फ्लैट में चौका बर्तन करने जाती हैं। उधर ही कहीं से उसकी बहन का पति भी आ रहा था, अधेड़ उम्र का मैला कुचैला आदमी और निकम्मा। बहन से पैसे ऐंठने आया होगा, रोज अपनी घरवाली के हाथ से पैसे छीन ले जाता है और बहन गालियां बकती है, और वह भी गली में खड़ा गालियां बकता है। तभी बसंती ने आंख उठाकर साइकिल चलाने वाले की पीठ की ओर देखा और उसके सारे बदन में झुरझुरी हुई। उसकी गोरी पतली सी गर्दन पर पसीने की हल्की सी परत थी। बसंती को वह बहुत अच्छा लगा और गर्व की लहर सी उसके शरीर में दौड़ गई। यह तो साफ सुथरा है और इसकी अपनी साइकिल है। बसंती ने हाथ बढ़ाकर दीनू की कमीज पीछे से खींच ली। क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो है? कुछ भी नहीं, आराम से बैठ। आराम से ही तो बैठी हूँ। बसंती की नज़र फिर दीनू की गोरी सी गर्दन पर पड़ी। दीनू के बाल पतले पतले और हल्के किरमची रंग के थे। पीछे से वह छरहरा सा बड़ा अच्छा लग रहा था। बूढ़ा तो नहीं है, उसने मन ही मन गर्व से कहा और उसके बदन में फिर हिलोर सी उठी। एक बार फिर चल उधर, टैक्सी स्टैंड की तरफ से चलते हैं। नहीं, तीनों ने डांट कर अधिकार के साथ कहा। चलना नहीं, और साइकिल रमेश नगर के बाहर निकलकर बड़ी सड़क पर आ गई। पृष्ठ संख्या 57। शाम के साए उतर रहे थे जब साइकिल ने एक ऊंचा फाटक पार किया और एक बहुत बड़े मैदान में दाखिल हुई। मोटरों गाड़ियों की भीड़ पीछे छूट गई थी। बड़ी सड़क का कोलाहल सहसा थम गया था और वे दोनों जैसे स्तब्ध निरवता में पहुंच गए थे। बसंती को लगा जैसे सब कुछ एक झटके से बदल गया है, जाना पहचाना जीवन पीछे छूट गया है और वह किसी अनजाने आंगन में पहुंच गई है जहां ना जाने क्या होगा, कैसा होगा। फिर उसे इस बात का भी भास हुआ कि वह अब सचमुच स्वतंत्र है, और इससे फिर उसके मन में हिलोर सी उठी। फाटक के अंदर पहुंचते ही जैसे दुनिया बदल गई। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे जामुन के पेड़ थे। दूर पेड़ों की कतार के पीछे एक इमारतें एक दूसरी से सटी अंधकार के पुंज की भांति खड़ी थी। जानती हूँ जानती हूँ, बसंती अपने आप ही बोल उठी, मुझे सब मालूम है। इधर दाएं हाथ वाली सड़क सीधी महेशपुरी को जाती है, उधर बस नहीं जाती, दूसरी तरफ रोजगार दिलाऊ दफ्तर है, मुझे सब मालूम है। हम लोग इधर जामुन तोड़ने आते थे, यहाँ पर इधर उधर झांकना नहीं, दीनू ने सावधान करते हुए कहा। किसी को पता नहीं चले कि कोई लड़की आई है। लड़के की लड़का, बसंती ने चहक कर कहा। दूर से एक मोटर कार आती दिखाई दी। बसंती ने पहले तो दीनू की कमर के पीछे से झांक कर देखा, फिर मोटर के नज़दीक आ जाने पर झट से दुबक कर बैठ गए। मोटर फर्राटे से पास से निकल गई। सुप्रिंटेंडेंट साहब की मोटर है, दीनू बोला। साइकिल पर भाग निकलने की योजना बसंती ने ही बनाई थी, लेकिन भागने के बाद क्या होगा इसका उसे कोई ध्यान नहीं आया था। दीनू उसे कहाँ ले जाएगा और कैसे छिपा कर रखेगा और क्या होगा, इस सब के बारे में वह कुछ नहीं जानती थी। पार्क में पहुँच कर दीनू और अधिक सतर्क हो गया था और हर जाते आते इक्का दुक्का चपरासी या बाबू को कनखियों से देख लेता था। रात को बूढ़ा चौकीदार राउंड पर आता है, उसके सामने कभी नहीं होना। पृष्ठ संख्या 58। दाएं हाथ को एक बड़ी सी 2 मंजिला इमारत आई। उसकी निचली मंजिल पर खिड़कियों की लंबी कतार के पीछे बत्तियां जल रही थीं। यह लाइब्रेरी है, यहाँ किताबें ही किताबें हैं, रात को भी यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, दीनू ने कहा। जानती हूँ जानती हूँ, यहाँ एक फूलों का बाग भी है, हम यहाँ फूल तोड़ने आते थे। वे कुछ ही दूर आगे गए होंगे कि बाएं हाथ को फूलों का एक बगीचा शुरू हो गया। हवा फूलों की महक से लदी थी। यहाँ सब गुलाब ही गुलाब हैं, दीनू ने रौब गांठने की सी आवाज में कहा। कुछ फूल तोड़ लें? इधर फूल नहीं तोड़ने देते, फूल तोड़ना मना है। इस वक्त कौन देखेगा, अंधेरा जो पड़ रहा है। नहीं, लेकिन बसंती साइकिल पर से कूद चुकी थी और भागती हुई सड़क पार कर बाग की झाड़ियों में जा पहुंची थी। क्या करती है, लौटा, उधर मत जा। और दीनू उसे रोकने के लिए साइकिल को एक पुल्ली के सहारे टिका उसके पीछे पीछे चला गया। पर दीनू के पहुंचते ना पहुंचते बसंती ने गुलाब के तीन चार बड़े बड़े फूल तोड़ डाले थे। यह क्या कर रही है बसंती? यहाँ मालिक ड्यूटी पर रहता है, मोटा चौकीदार भी इधर घूमता है। घूमता है तो घूमता रहे, बसंती ने सिर झटक कर लापरवाही से कहा और लपक कर तीन चार फूल और तोड़ लिए। शादी कभी फूलों के बिना भी हुई है, बसंती ने हंसकर कहा और अपने बालों में एक फूल टांकने लगी। फिर यह देखकर कि उसने तो लड़कों के कपड़े पहन रखे हैं और सिर पर साफा बांध रखा है, फूल को कान के ऊपर खोंस लिया। कैसा लगता है क्या? पृष्ठ संख्या 59। यह फूल और क्या, तू क्या सोच रहा है, अच्छा लगता है ना? प्रमिला बीवी की लड़की भी यहीं पर फूल टांगती है, बालों में, कान के ऊपर। टीवी पर हेमा मालिनी ने भी इधर ही फूल लगाया था, कहते हुए बसंती हंसने लगी। तू हेमा मालिनी है? और नहीं तो क्या, और वह किलकारी भरकर हंसने लगी। इधर शोर नहीं कर, धीरे बोल। बसंती दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई और दीनू की ओर देखने लगी। आकाश में चांद निकल आया था और उसके निकलते ही जैसे सभी कलियों के चेहरे खिल उठे थे और वह अपनी सारी सुरभि एक ही बार में हवा में उड़ेलने लगी थी। बसंती दीनू के सामने खड़ी थी, उसका शरीर पुलक पुलक रहा था, उसके होठों पर हल्के हल्के श्वेत के कण चमक रहे थे। उसे दीनू बड़ा निखरा निखरा सा सुंदर लगा। बसंती कद में छोटी थी, लड़कों की पोशाक पहने वह और भी बच्चा सी लग रही थी। उसकी हाँपती सांस और बुशर्ट से नीचे छाती पर उतार चढ़ाव बार बार दीनू की आँखों को बांध रहा था। तू भी कैसी है, पकड़े गए तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर बसंती उत्तरोत्तर अधिक लापरवाही से बातें करने लगी थी। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं कहूँगी मैं अपने मर्द के साथ आई हूँ या मेरा मर्द है। उसने बड़ी चाहना के साथ कहा और हंस दी। तू मेरा मर्द है ना, और क्या? और हाथ उठाकर दीनू की छाती पर अपनी उंगली फेरने लगी। मेरा मर्द है, यह है मेरा मर्द। और फिर हंसने लगी। एक फूल तेरे बालों में लगा दूं? और बसंती ने पंजों के बल उठकर एक फूल दीनू के कान के ऊपर खोंस दिया। वाह जी वाह, कैसी सूरत बन गई है। दीनू की नज़र में यह बसंती का अल्हड़पन था, पर बसंती की नज़र में यह क्या था, इस बात का पुलकता गर्व कि उसके सामने लंगड़ा दर्जी नहीं जिसके साथ उसका बाप उसे बांधना चाहता था, बल्कि एक ऐसा जवान है जिसके साथ हुआ भाग आई है कि जो उसकी बहनें नहीं कर पाई थी वह उसने कर दिखाया है। पृष्ठ संख्या 60। चल यहाँ से, दीनू ने अधिकार के साथ कहा और बसंती चुने हुए फूलों को साफे के शमले में बांधती हुई बगीचे में से बाहर निकल आई। वाह, अभी से हुक्म चलाने लगा है, बसंती ने हंसकर कहा। साइकिल चलाते हुए दिनू भी अब पहले से कहीं ज़्यादा लापरवाह महसूस करने लगा था। बसंती के यौवन भरे सामीप्य के कारण उसके भी छोटे छोटे संकोच झड़ने लगे थे। नौकरी के नियमों का तीखापन टूटने सा लगा था और वासना की हल्की सी रेशमी चादर सभी कठोर वास्तविकताओं को ढकने लगी थी। छात्रावास की 2 मंजिला इमारत अभी दूर ही थी कि दीनू एक जगह पर रुक गया। उसने बसंती को साइकिल पर से उतर जाने को कहा और स्वयं साइकिल पर बैठे बैठे बोला, तू इस मैदान को लांघकर उस बड़े पेड़ की ओट में चली जा। और तू? बसंती ने पूछा। मैं सड़क के रास्ते वहां जा रहा हूँ, वहां हॉस्टल का पिछवाड़ा है, उधर देख नीचे दाएं हाथ कोने वाली कुर्सी मेरी है। मैं सामने से जाकर अंदर से कोठरी का दरवाज़ा खोल दूंगा और थोड़ी देर के लिए रोशनी करूंगा, तू उसी ओर देखती रहना, मैं रोशनी करके फिर बुझा दूंगा, बस तू तब चल देना। मैदान पार करके बरामदे में आ जाना, कोई रास्ते में बुलाए तो बोलना नहीं, दरवाज़ा अंदर से खुला होगा, सीधी अंदर चली आना। अच्छा? और दिनू साइकिल पर पांव रखकर चला गया और शीघ्र ही शाम के बढ़ते अंधेरे में खो गया। दिनू के चले जाने पर बसंती सहम सी गई, चारों ओर उसे बहुत सूना सूना लगा। वह ठिठकी सी खड़ी रह गई। पहली बार उसे इस बात का विश्वास हो गया कि वह सब कुछ छोड़ आई है। दिनू की कुर्सी का दरवाज़ा खुलने पर वह जैसे अपने भविष्य में प्रवेश करेगी। कुतूहल, खिलवाड़ और उत्साह के साथ अब भय और आशंका का पुट भी मिल गया था। कुछ देर तक उसकी आंखें दीनू को पैडल चलाते देखती रही, पर शीघ्र ही वह अंधेरे में खो गया। आगे क्या होगा, कैसा होगा, इस बारे में अधिक सोचने की आदत बसंती को नहीं थी। पृष्ठ संख्या 61। पर बढ़ते अंधेरे में निपट अकेली एक पतली सी डोर के सहारे अपने अज्ञात भविष्य से जुड़ी रहने का भी उसे अनुभव नहीं हुआ था। छात्रावास की इमारत पहले से भी अधिक गोपनीय सी लगने लगी थी। अंधेरे में आंखें गाड़े वह निचली मंजिल के एक कोने की ओर देखे जा रही थी और वहां खड़े खड़े अकारण ही 2 मोटे मोटे आंसू बसंती के गालों पर लुढ़क पड़े। दिनू और बसंती की जान पहचान बहुत पुरानी नहीं थी, थोड़े ही दिन की थी, पर धीरे धीरे गहराती गई थी। 11वें ब्लॉक में 3 मंजिला घर वालों के यहाँ शादी थी जब बसंती की मुलाकात पहली बार दीनू से हुई थी। वहाँ बस्ती को बर्तन मलने का काम मिला था और दीनू ने बड़े बड़े चूल्हे बनवाए थे और 200 जनों की बारात के लिए खाना बनवाया था। उसे वहाँ सभी नौकर चाकर साइकिल वाला दीनू कहकर पुकारते थे। बसंती बर्तनों के ढेर के पास बैठी बर्तन मल रही थी जब यह पीछे से आकर चमक कर बोला था, जल्दी जल्दी हाथ चला, ऐसे में काम नहीं चलेगा। और बसंती ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा था। जितनी देर में 20 बर्तन धुल जाते हैं उतनी देर में तुमसे 5 बर्तन भी नहीं धुले, तो तू आकर धो ले। और वह सचमुच बर्तन मलने को बैठ गया था। उसके बर्तन मलने के ढंग से बसंती प्रभावित हुई थी। वह पहले कहीं से गर्म पानी का बड़ा सा पतीला उठा लाया था और बहुत से प्लेटें और कटोरियां और चम्मच उसमें डुबो दिए थे। फिर बड़ी फुर्ती से एक एक बर्तन निकालना, साबुन से सना चिथड़ा उस पर मल देता और एक ओर को रखता जाता। तू धोती जा, जल्दी कर। मैं क्यों धोऊं? तू धो जो धोने बैठा है। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बसंती की ओर देखा और बसंती बिना जिरह किए बर्तन को नल के नीचे धोने लगी। 5-7 मिनट में सचमुच ढेर के ढेर बर्तन साफ हो गए। पृष्ठ संख्या 62। दिनू कम बोलता था, एक छींटा भी उसके कपड़ों पर नहीं पड़ा था। जब वह बर्तन मलकर उठा तो पहले की ही तरह साफ सुथरा लग रहा था। शाम को भी मेरे साथ बर्तन धुलवा देना, बसंती ने हंसते हुए कहा। बर्तन मलना मेरा काम नहीं है। तेरा काम क्या है? ऐंठ ऐंठ कर लोगों पर हुक्म चलाना। दिनू चुप रहा था, वह यों भी कम बोलता था। बसंती ही सारा वक्त चटर पटर करती रहती थी। बिना कुछ कहे हाथ पोछता हुआ दिनू वहां से चला गया। दिनू का मौन स्वभाव और साफ सुथरा व्यक्तित्व बसंती को अच्छा लगा था। शाम को फिर से बर्तनों का अंबार बसंती के सामने रखा था और जगह इतनी तंग और अंधेरी थी कि नल के पास बैठकर बर्तन मलना सचमुच नामुमकिन हो रहा था। मोहल्ले भर के गरीब बड़े प्लेटों पर से जूठन बटोरने के लिए उतावले हो रहे थे और उनके बीच बसंती की माँ भी खड़ी थी, इस उम्मीद पर कि उसकी बेटी अंदर से 10-20 पूरियाँ उसे ला देगी। चारों ओर चिल्लपो मची थी। उस वक्त भी कहीं से दीनू पहुंच गया था और उससे कुछ भी कहे बिना कहीं से गर्म पानी की बाल्टी उठा लाया था और सुबह ही की तरह बड़ी फुर्ती से प्लेटें मलने लगा था। तू धोती जा, दीनू ने कहा तो बसंती को उसमें बड़ा अपनापन सा लगा था। ठहर अभी नहीं, दीनू झट से बोला था। वह खाली टोकरा उठा ला जो उधर मेज के नीचे रखा है, उसमें प्लेटों की जूठन डालती जा। बसंती चुपचाप उठा लाई थी। फिर से बड़ी फुर्ती से काम होने लगा था और बसंती दिल में उछाह सा महसूस करने लगी थी। उसे बर्तन धोने का काम अच्छा लगने लगा था। तूने लड़के को देखा है? बसंती बोली। कौन से लड़के को? अरे दूल्हे को, जिसकी शादी हो रही है। नहीं तो? मैंने देखा है, तेरे से कुछ कुछ मिलता है, बसंती ने कहा। फिर हंसकर बोली, पृष्ठ संख्या 63, तेरे जैसा ही मरियल सा है, पीला पीला और बड़ी बड़ी आँखें हैं, उल्लू की आँखें जैसी। और बसंती खिलखिला कर हंस दी थी। दिनू ठिठक गया था और भंवे चढ़ाए उसकी ओर घूरता रहा था। फिर बिना कुछ बोले काम में लग गया था। पतला छरहरा बदन, गले में कंठी और छाती का ऊपर का हिस्सा उघड़ा उघड़ा, अपनी सफ़ेद कमीज की आस्तीनें चढ़ाए वह काम में जुटा हुआ था। बसंती की नज़र बार बार उसकी ओर जा रही थी। तेरे लिए खाना लाऊं? बसंती ने कहा। तू कहाँ से लाएगी? अभी तो सारी बारात ने खाना भी नहीं खाया। तुझे इस टोकरे में से निकाल लेती हूँ, जूठन के टोकरे की ओर इशारा करते हुए बसंती ने कहा। एक झापड़ दूंगा तेरे मुंह पर, ये बड़े बड़े दांत सब बाहर निकल आएंगे। और जवाब पे मैं एक झापड़ दूंगी तो तेरे सारे दांत पेट के अंदर पहुंच जाएंगे। और बसंती खिलखिला कर हंसने लगी थी। चल अपना काम देख, बहुत टर टर कर रही है। शादी के बाद दीनू न जाने कहाँ ओझल हो गया था, बहुत दिन तक नज़र नहीं आया। फिर एक दिन साइकिल पर बैठा रमेश नगर की गलियों में घूम रहा था। उस दिन बसंती श्यामा बीवी के घर के पिछवाड़े एक चबूतरे पर बैठी थी और दीनू बसंती को देखकर उसके पास आकर रुक गया था। मुझे ढूंढ रहा है, बसंती खिलखिला कर बोली थी। मैं तो उसी दिन से यहाँ बैठी हूँ, मैं अब नौकरी करने लगा हूँ। कहाँ? इधर नज़दीक ही लड़कों के हॉस्टल में। तो तू शादी ब्याह का काम करता था, वह क्यों छोड़ दिया? वह कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, यहाँ बंधा हुआ काम है, यहाँ मुझे कमरा भी मिला हुआ है। पहले क्या साइकिल पर सोता था? बसंती फिर खी खी करके हंसने लगी। तू तो सो भी सकता है, उल्लू पेड़ पर बैठा बैठा सो जाता है, आँखें पृष्ठ संख्या 64 खुली रहती हैं, तू भी साइकिल पर बैठा बैठा सो जाता होगा। और बसंती अपने ही थोथे मजाक पर हंसी से लोटपोट होने लगी थी और दीनू अटपटा सा महसूस करता हुआ उसकी ओर देखे जा रहा था। और अब पेड़ की ओट में खड़ी बसंती खोई खोई सी उस हॉस्टल पर आंखें गाड़े खड़ी थी जहाँ दीनू काम करता था। हाथ में छोटा सा थैला उठाए जिसमें वह अपने 2 कपड़े ठूस लाई थी और साफे के शमले में बंधे 5-7 फूल। तभी दीनू की कोठरी में रोशनी हुई। एक लहर सी बसंती के तन बदन में दौड़ गई, उल्लास की लहर, दीनू के प्रति विश्वसनीयता की लहर, जीवन के प्रति उत्साह की लहर। और दूसरे क्षण बत्ती बुझने पर बसंती पेड़ की ओट से निकल आई और भागती हुई कोठरी की ओर बढ़ने लगी। देर तक भावनाओं के सागर में डूबती उतरती बसंती जाने किस वक्त खाट की पाटी पर सिर रखे सो गई थी। कमरे तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगी थी। उछल कर बरामदे में पहुंचते ही बसंती ने हौले से दरवाजा सरका दिया और पलक मारते अंदर पहुंच गई और झट से दरवाजा बंद कर लिया था। दीनू कमरे में नहीं था। अंधेरे में बहुत बार बुलाने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह समझ गई कि वह अपने काम से चला गया होगा। कमरे में बीड़ियों की कसैली बू थी और सीलन थी। वह टटोल टटोल कर कमरे के अंदर रखी चीज़ों का अंदाजा लगाने लगी। खाट के पाए से उसका पांव टकराया। खाट पर दरी बिछी थी, कुछ कपड़ों पर भी बसंती का हाथ लगा। धीरे धीरे खिड़की में से छन छन कर आने वाली मध्यम सी रोशनी में उसे कमरे के अंदर रखी चीज़ों की धूमिल सी रूपरेखा नज़र आने लगी। बसंती वहीं फर्श पर बैठ गई और बेताबी से दीनू की राह देखने लगी। बाहर से तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ दूरी से बर्तन खटकने की आवाज़ें आ रही थी, यही हॉस्टल का किचन रहा होगा जहाँ दीनू काम करता है। पृष्ठ संख्या 65। नल चलने की आवाज़ थी, कहीं से गाने की आवाज़ भी आ रही थी। कोई लड़का बाहर गाता हुआ बरामदे में से जा रहा था। पहले उसकी आवाज़ नज़दीक आती गई, फिर धीरे धीरे दूर होने लगी। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। बसंती हंस दी। यही गीत वह भी सदा गुनगुनाती रहती थी। उन दिनों यही हर एक की जबान पर था। एक बार फिर बसंती के मन में हिलोर सी उठी, बुढ़ा गया भाड़ में। वह बुदबुदाई और हंसती। अब ना तो उसका बाप कुछ कर सकता है, ना उसकी माँ। वह अब उसके चंगुल से निकल आई है। इसी हिलोर में बसंती का मन हुआ बीड़ी सुलगा ले। उस शर्ट की जेब में से उसने माचिस निकाली भी, पर फिर ठिठक गए। माचिस जलाई और रोशनी हुई तो दिनों बिगड़ेगा, कहेगा तूने रोशनी क्यों की। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहने के बाद बसंती को फिर बीड़ी पीने की ललक हुई। मैं तो कोने में बैठी हूँ, मुझे कौन देख सकता है। बेकार की बात, बंद कमरे में मुझे कौन देख सकता है। और उसने बीड़ी सुलगा ली। दियासलाई जलने की देर थी कि उसी कोन में सारा कमरा बसंती को दिख गया। अलगनी पर से लटकता पाजामा, खिड़की के दासे पर रखी पानी की सुराही, बंद दरवाजा, दीवार के साथ रखी साइकिल, खाट, यहाँ तक कि फर्श पर बिखरी अधजली बीड़ियाँ भी उसने देख ली। कुछ एक कष लेने के बाद उसने बीड़ी को बुझा दिया और पहले की ही तरह टटोल टटोल कर खिड़की के दासे तक जा पहुँची और सुराही पर रखे गिलास में पानी उडेल कर गट गट पीने लगी। पानी पीकर उसे बड़ी तृप्ति मिली। उसे मालूम नहीं था कि उसे इतनी प्यास लगी थी। वह फिर टटोलती हुई खाट के पास पहुंच गई। पहले तो वह खाट के ऊपर ही बैठ गई, पर फिर कुछ सोचकर खाट पर से उतर आई और खाट की बाहीं से टेक लगाकर फर्श पर बैठ गई। उसका मन हुआ एक बार फिर दियासलाई जलाए और कमरे में रखी चीज़ों को ध्यान से देखे। उसने बुशर्ट की जेब से दियासलाई निकाली भी, पर फिर अरे छोड़ो बिगड़ेगा हरामी, कहकर जेब में डाल ली। मुझे अंधेरे में छोड़कर चला गया, वह बड़बड़ाई। पर उसके दिल के अंदर दीनू के प्रति फिर से प्रेम का ज्वार सा उठा। दियासलाई जलाने पर कमरे की जो थोड़ी सी झलक उसे मिली थी, उसी से उसके अंदर आत्मीयता का आशा। पृष्ठ संख्या 66। भाव जाग गया था और वह कमरे को अपना समझने लगी थी। दीनू की खाट के साथ पीठ लगाकर बैठना भी उसे अच्छा लग रहा था। बैठे बैठे उसके दिल की अजीब सी हालत होने लगी। उसे लगा जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ छूट रहा है, पर साथ ही साथ कुछ अनूठा सा बन भी रहा है। वैसे ही जैसे पत्ते झड़ भी रहे हैं और हरी हरी कोंपलें निकल भी रही हैं, जैसे उसके अंदर कुछ मर रहा है, पर साथ ही साथ अंगड़ाइयाँ ले लेकर कुछ जाग भी रहा है। कल मैं उसका कमरा बुहार दूंगी, कपड़े भी धो दूंगी, सब साफ कर दूंगी। इसी तरह देर तक भावनाओं के ज्वार में डूबती उतराती दीनू की राह देखती देखती बसंती खाट की पाटी पर ही सिर रखे गहरी नींद में सो गई। उसकी नींद तब टूटी जब कोई हाथ उसके शरीर को टटोलता हुआ अस्तनों पर ठहर गया और उन्हें बड़ी आतुरता से दबाने लगा था। कौन है, बसंती की मुंह से निकला और वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। कुछ देर के लिए उसकी समझ में नहीं आया कि वह कहाँ पर है और आसपास इतना अंधेरा क्यों है। गहरी नींद के कारण कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। शोर नहीं कर, कोई सुन लेगा, दीनू ने धीमी आवाज़ में कहा। दीनू की आवाज़ सुनकर उसे सुखद सा अनुभव हुआ। उसने अपना गाल दीनू के घुटने पर रख दिया और फिर से मीठी नींद में डूबने लगी। तो इतनी देर से क्यों आया, वह बुदबुदाई। दीनू ने उसे बाहों में भर लिया था। बसंती के लिए यह अनुभव अनूठा था। एक ओर वह दीनू की बाहों में सिमटती जा रही थी, दूसरी ओर खिंचती भी जा रही थी। तरह तरह के घरों में चौका बर्तन करते हुए उसे तरह तरह के अनुभव हो चुके थे। बहुत निकट खड़े आदमी की धकौनी की तरह चलता सांस वह कई बार अपनी गर्दन पर महसूस कर चुकी थी। आदमी की गंध से वह परिचित थी। वह उसकी गीली गीली लिजलिजी कामातुर आँखों को भी पहचानती थी। जब उसके मन में घिन सी उठती थी और वह किसी न किसी बहाने वहाँ से भाग खड़ी होती थी, लेकिन यहाँ दीनू की बाहों में उतरते जाना उसे अच्छा लग रहा था, जैसे कोई आदमी किसी गहरे सागर में डूब रहा हो। गहरा और गहरा और छटपटाने के बजाय उसे डूबने में ही सुख मिलने लगे और वह उसमें डूबता चला जाए। पृष्ठ संख्या 67 पर बसंती सहसा ही हड़बड़ा कर उठ बैठी और दीनू को पीछे धकेलती हुई उसकी बाहों से निकलने लगी। उठ उठ, क्या है? उठ उठना। बसंती हाथ पकड़कर दीनू के बाल बिखेरते हुए उसे बड़े दुलार से बोली, क्या है बसंती, बत्ती जला दूं? नहीं, तू फिर उठ जा। क्या शोर मचा रही है, कोई सुन लेगा? कोई नहीं सुनेगा, उठ। दीनू खाट की पाटी पकड़कर उठ खड़ा हुआ। इधर तेरे पास भगवान जी की मूर्ति है क्या? भगवान जी की मूर्ति? क्या पागलों वाली बात कर रही है, यह मूर्ति कहाँ से आ गई मेरे पास? कोई तस्वीर तो होगी, है ना तेरे पास भगवान जी की तस्वीर? क्या बोले जा रही है बसंती, ऐसा नहीं कहते। भगवान जी के सामने हम दोनों खड़े होंगे, हाथ जोड़कर सिर नवाएंगे, ऐसे ब्याह करेंगे। तू मेरे माथे पर टीका लगाना, मैं तेरे माथे पर टीका लगाऊंगी। है तेरे पास भगवान जी की तस्वीर? तीनू को याद आया उसके एक मित्र की एक जंत्री कमरे में रखी है और उसके आवरण पर कृष्ण भगवान का चित्र है। दीनू ने अलमारी की ओर हाथ बढ़ाया और जंत्री उठा ली। यह क्या खिलवाड़ कर रही है? यह खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? कभी ब्याह भी ऐसे हुए हैं? यह क्या उठाया है? पृष्ठ संख्या 68 जंत्री है, इस पर भगवान जी का चित्र है। मिल गया। बसंती चहक उठी, चल बाहर। बाहर कहाँ? तू पागल हो गई है बसंती, इधर बरामदे में चलना। कुछ नहीं होगा, सब लोग सो रहे हैं। बसंती सचमुच पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। ठहर, पहले सुराही में से पानी लेकर मुंह धो ले, मैं भी धो लेती हूँ। दीनू बसंती को बाहों में भर पाने के लिए उतावला हो रहा था। उत्तरोत्तर उसका आग्रह बढ़ता जा रहा था, मन ही मन इन व्यवधानों से खीझ रहा था। पर इस समय बसंती के साथ बहस करना या उसका विरोध करना इसकी सनक को और भी तूल देना था, इसलिए वह चुपचाप जैसा वह कहती थी किए जा रहा था। थोड़े थोड़े पानी से दोनों ने मुंह पर छींटे मारे। बसंती ने बंगालियों की तरह हाथ में थोड़ा पानी लेकर अपने बाल भिगोए। फिर वह धीरे से भाव विह्वल सी दीनू के पास जाकर बोली, भगवान जी की तस्वीर लेकर बाहर बरामदे में चल, वहाँ इस वक्त कोई नहीं है। दोनों बरामदे से निकलकर आ गए। बाहर चांद खिला था और मंद मंद शीतल हवा बह रही थी। भगवान के चित्र वाला फटा हुआ कागज बसंती ने इधर उधर देखकर एक आले में रख दिया। इसके सामने खड़ा हो जा, यों बसंती ने आग्रह से कहा। दीनू मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। उसके साथ सटकर बसंती भी खड़ी हो गई, हाथ जोड़। दीनू ने सिर झटक कर हाथ जोड़ दिए। न जाने इसकी प्रेरणा बसंती को फिल्मों से मिली थी या उसकी अंतः प्रेरणा ही उसे मजबूर कर रही थी, पर वह अपनी ओर से ब्याह की पूरी रस्म निभा रही थी। सहसा बसंती भागती हुई कमरे में गई और खाट पर से फूल उठा लाई जो उसने बाग में से तोड़े थे। उसने एक फूल हाथ में लिया और उसे दीनू के हाथ में देती हुई बोली, यह फूल मेरे बालों में लगा दे। पृष्ठ संख्या 69 दीनू ने वैसा ही किया। एक फूल तो हर कोई औरत लगाती है, मेरा तो ब्याह हो रहा है, तू एक और फूल मेरे बालों में लगा दे। और उसने एक और फूल दीनू के हाथ में दे दिया। दीनू इस खिलवाड़ से ऊब रहा था। बसंती की मादक देह का सामीप्य ही उससे यह सब उल जलूल काम करवा रहा था। उसने चुपचाप एक और फूल उसके बालों में टांग दिया। अब तू मेरी मांग भर, मेरे पास लाल रंग है। बस बस, बहुत हो चुका, चल कमरे में। ऐसे नहीं बोलते, भगवान जी के सामने खड़ा ऐसे बोलता है? आज से मैं तेरी घर वाली हूँ, तू मेरा घर वाला। दिनु चुप रहा। बसंती पंजों के बल ऊंची उठी और जैसे तैसे दो फूल दीनू के बालों में खोस दिए। फिर बचे खुचे फूलों की पंखुड़ियाँ तोड़कर मुट्ठी भर पंखुड़ियाँ हवा में उछाल कर दीनू के और अपने ऊपर डाल ली। चांद की चांदनी में बरामदे में खड़े दीनू का चेहरा उसे बड़ा गोरा चिट्टा और सुंदर लगा। उसकी आस्तीन पकड़कर और उसके पास सटकर बसंती धीरे से बोली, अब हाथ पकड़ा है तो छोड़ना मत, उसने कुछ कुछ फिल्मी अंदाज में कहा। यह अभिनय भी था, खिलवाड़ भी था, विवाह भी था। विवाह का स्वांग भी था और भावी दाम्पत्य जीवन के लिए नारी हृदय की सहमी सहमी सी भाव विवल प्रार्थना भी थी। सभी कुछ था और आकाश में चांद भी खिला था, जो जीवन की प्रत्येक वास्तविकता को अपने आंचल में लेकर जादुई और रहस्यपूर्ण बना देता है।